Good evening, listeners, and welcome to this Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on mutual fund and related matters. To connect with us, you can call us on 2331-4444. 2342-1050 and 2331-0464, and of course do prefix the code 011. To navigate you through today's show, your very own anchors Subodh Mishra and Sarabjeet Kaur.
Dhanyawad Sarabjeet, aur namaskar shrotaon, karobari khabron ke sath Market Mantra hazir hai. Aaj ravivar hai aur har ravivar ki tarah aaj bhi hum mutual fund se jude aapke sawalon ke jawab denge. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444-2342-1050 और 2331-0464. दिल्ली से बाहर के श्रोता और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट स्नेहा सूरी. स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
जी धन्यवाद.
पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत.
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज 22,615 करोड़ रुपीस इनटू इंडियन इक्विटीज इन फरवरी, रीचिंग 17 मंथ हाई. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 4,400 करोड़ रुपीस इन मदुरई. एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स टू फोकस ऑन जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड टैरिफ रिलेटेड डेवलपमेंट्स फॉर क्यूज इन हॉलिडे ट्रंकेटेड नेक्स्ट वीक.
फरवरी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयरों में 22,615 करोड़ रुपए की खरीदारी की 17 महीनों का सबसे ऊंचा आंकड़ा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदुरई में 4,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कम कारोबारी दिनों वाले अगले हफ्ते में देश के निवेशकों का फोकस रहेगा वैश्विक तनाव और टैरिफ से जुड़ी गतिविधियों पर.
And listeners, before we let you know what's the big news of the day and we entertain your calls, just a word of caution. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
तो सरबजीत, शुरू करते हैं. हम पहली खबर पर नजर डालें
जी
कि एफपीआई का क्या हाल रहा है. फरवरी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयरों में 22,615 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जिससे लगातार 3 महीनों की निकासी का सिलसिला टूट गया. सितंबर 2024 के बाद इस साल फरवरी में सबसे अधिक मासिक निवेश दर्ज किया गया. सितंबर 2024 में एफपीआई ने भारतीय शेयरों में 57,724 करोड़ रुपए का निवेश किया था. ताजा आंकड़ों के अनुसार फरवरी में एफपीआई ने भारतीय ऋण बाजारों में भी 5,380 करोड़ रुपए का निवेश किया. इससे पिछले महीने में यानी जनवरी में भारतीय पूंजी बाजार में कुल निवेश 37,000 ये जनवरी का आंकड़ा नहीं है सरबजीत, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था. इससे अभी पिछले महीने यानी फरवरी में भारतीय पूंजी बाजार में कुल निवेश 37,804 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है.
जी बिल्कुल.
नए साल की सुस्त शुरुआत के बाद फरवरी में लिवाली में तेजी आई है. जनवरी में 35,962 करोड़ रुपए और दिसंबर में 22,611 करोड़ रुपए की लगातार निकासी के बाद अब विदेशी निवेशकों ने रुख बदला है. हमारे पहले कॉलर इंतजार कर रहे हैं थाने से. शिवशरण, आपका स्वागत है, सवाल पूछें.
मेरा अभी करंटली आईसीआईसीआई है, 220,000 है, वो फंड कैसा है? और मेरा 3 एसआईपी जा रहा है, निपॉन मिड कैप फंड 4,000, सॉरी एचडीएफसी मिड कैप फ्रंट 4000, मिड टर्म स्मॉल कैप 2000, मिड टर्म सिल्वर ETF 1000 और गोल्ड ETF 1000, और एक नया फंड में देख रहे हैं 3000 है या के लिए, तो एक नया फंड बताइए और जो भी एग्जिस्टिंग कर रहा हो ठीक है प्लीज बताइए
जी। शिवचरण जी, आपकी आवाज में क्लैरिटी की कमी थी, जितना मैं समझ पाई हूँ आप कुछ फंड्स में SIP कर रहे हैं, जिसमें एक मिड कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है, एक सिल्वर ETF है और एक गोल्ड ETF है, एंड अभी आप कोई हाल फिलहाल में नया फंड आया है जिसको आप देख रहे हैं। तो जितना मैं समझ पाई थी, HDFC का मिड कैप फंड आपने मेंशन करा था, तो वो एक डिसेंट फंड है। स्मॉल कैप फंड आपने कौन सा बताया वो मैं समझ नहीं पाई थी, बट अगर आप SIP को कम से कम 5-7 साल के लिए जारी रखना का सोच रहे हैं, तो बिल्कुल मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल हमें रखना चाहिए। जहां तक गोल्ड और सिल्वर ETF की बात है, बहुत चांसेस हैं कि आपने इस फंड में जब इन्वेस्ट करा हुआ है तो आपने देखा होगा हाल फिलहाल में कि क्या चल रहा है इन मेटल्स की परफॉर्मेंस में, जिसकी वजह से आपने सोचा होगा कि इसको पोर्टफोलियो में डालते हैं। इसमें सिर्फ एक यही चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये मेटल्स जो हैं, ये आपके पोर्टफोलियो का एक लगभग 10% से ज्यादा एक्सपोजर ना रखिएगा, क्योंकि ज्यादा बेहतर रहता है कि जो इक्विटी एज एन एसेट क्लास है, जो एक ऐसा एसेट क्लास है जिसका ग्रोथ हमने हर साल के साथ बढ़ते हुए देखा है, चाहे वो अप्स एंड डाउन्स के थ्रू रहता है, बट उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जो एक फायदा होता है वो ज्यादा बेहतर रहता है। इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में ज्यादा एलोकेशन उसी का रहना चाहिए। मैं यहां आपको एक ये सजेशन देना चाहूंगी, नया फंड जो आ रहा है आप उसको ना देखकर, क्योंकि अभी वो आएगा, वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाएगा, और मैं समझ नहीं पाई थी आपने कौन सी स्ट्रैटेजी बताई थी। इंस्टेड ऑफ दैट न्यू फंड आप ये कर सकते हैं कि जो आप अपने ये मिड स्मॉल कर ही रहे हैं, इनमें तो आप लगे ही रहिए। गोल्ड सिल्वर में एक ये 10% का मतलब 10% का एलोकेशन का बैंड बना के उसमें भी आप लगे रहिए। बाकी आप एक डाइवर्सिफाइड फंड भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, कोई भी दो अच्छे मल्टी कैप या फिर एक मल्टी कैप और एक फ्लेक्सी कैप का एक्सपोजर भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए।
और अगले कॉलर दिल्ली से योगेश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
जी पूरी टीम को नमस्कार और होली की मैं शुभकामनाएं देता हूँ, मगर लगता है कि होली का रंग इस बार हरे की जगह लाल होने वाला है मार्केट का, जिस तरीके से न्यूज आ रही है। मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल ये है कि HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड और पराग पारेख के केस में हमने ये ऑब्जर्वेशन नोट करी है कि जब सेंसेक्स का लेवल 75,000 था तो जो इनके NAV मान लीजिए 30 रुपए थी, और जब सेंसेक्स 80,000 पे जाकर के वापस 75 पे आया तो NAV वापस 30 ना आकर के 31 पर ही आई। यानी कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये इंटरनली मुनाफा वसूली करते हो और जब स्टॉक्स ऊपर चले जाते हो तो ये मुनाफा वसूली करके डेट में आ जाते हो, ताकि जब सेंसेक्स दोबारा गिरे मगर इनकी NAV कम गिरती है थोड़ा सा।
जी योगेश जी, जो फंड्स में समझ पाए आपने बोला HDFC बैलेंस एडवांटेज और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। सो फ्लेक्सी कैप तो एक अलग ही स्ट्रैटेजी हो जाती है जो ऑल इक्विटी में मोस्टली इन्वेस्ट करती है, बट पराग पारेख फ्लेक्सी कैप कुछ टाइम से 20% डेट कैश में भी एलोकेशन रख के बैठा हुआ है, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट का कहना है कि उनको अच्छा आइडियाज नहीं मिल रहे इन्वेस्टमेंट आइडियाज की वो इन्वेस्ट कर पाए। जहां तक एक बैलेंस एडवांटेज फंड की बात है, तो एज अ कैटेगरी जनरली ये देखा गया है कि ये फंड्स मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ अपने एलोकेशन एडजस्टमेंट करते हैं इक्विटी और डेट के डेट में यूजुअली। सो HDFC बैलेंस एडवांटेज बिल्कुल एक ऐसे मैंडेट के साथ आता है कि वो ये कर सकता है। जो आप कह रहे हैं कि आपने नोट करा है कि इनका कुछ ये कुछ मुनाफा बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली बैलेंस एडवांटेज फंड्स सब AMCs के अपने अपने मॉडल्स होते हैं, कुछ सेंसेक्स के PE के हिसाब से होता है, कुछ सेंसेक्स के इंडेक्स लेवल्स के हिसाब से होता है। तो व्हेन यू जब हम इन्वेस्ट करते हैं इन अ डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड, तो एक जो घुसते ही उस फंड में हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ एसेट एलोकेशन, उसे हम छोड़ देते हैं एक तरीके से, क्योंकि हम फंड मैनेजर को ये कह रहे हैं कि आप जैसा आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग हमारे इस पैसे को इक्विटी और डेट में शिफ्ट करके हमारे लिए प्रॉफिट बनाइए। तो ये मैं आपको बोल सकती हूँ फॉर HDFC बैलेंस एडवांटेज, और ये फंड अच्छा करता आया है अपनी जो भी वो मॉडल जो उनका एसेट एलोकेशन को मैनेज करने का मॉडल है।
जी अगले कॉलर है बिहार से टिंकू राय, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
नमस्ते सर।
जी नमस्ते।
जी सवाल पूछें
सर। मैं ये सवाल चाहते हैं कि मैं 48 का उम्र हो गया और मैं बच्चे बुच्चे के लिए SBI में कोई म्यूचुअल फंड का चूज करना चाहते हैं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। बैंक गए थे और इसके लिए मुझे जानकारी चाहिए, कौन सी फंड म्यूचुअल फंड लिया जाए जो 5-7 साल 8 साल के लिए निवेश करे, 500 का महीना SIP, जो आगे जाके बच्चे बुच्चे का एजुकेशन हो या कोई फंड हो उसमें अच्छा सुविधा हो जाए, कुछ पैसे बढ़ जाए।
जी टिंकू जी, आप कह रहे हैं कि आप बैंक गए थे अपने और आप बैंक के थ्रू इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप वहां पे एक बार फिर से जाइएगा और उन्हें कहिएगा कि आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि जो भी वो फंड आपको बेच रहे हैं उसके नाम में अग्रेसिव हाइब्रिड आ रहा होगा। ऐसे कोई भी दो फंड्स में आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप शुरुआती निवेशक लग रहे हैं मुझे तो। एक ये जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं वो इक्विटी मार्केट, शेयर बाजार और जो स्टेबल बॉन्ड्स होते हैं उनका एक मिश्रण हमें प्रोवाइड करते हैं, तो वो उससे हमारा एक एक्सपीरियंस जो बनता है शेयर बाजार को जानने पर रखने का, उसका एडवांटेज समझने का, वो सही रहता है। आप कुछ समय इसमें इन्वेस्ट करिए और इसमें एक बार कंफर्ट आ जाए तो हम आपके बच्चों के लिए और भी दूसरे टाइप ऑफ फंड्स का आपके पोर्टफोलियो में जिनको डालना चाहिए उनके बारे में बात करेंगे।
जी, अगली खबर पे नजर डालते हैं। भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में साप्ताहिक बढ़त जारी रही। अमेरिकी टैरिफ नीतियों और अमेरिका ईरान संघर्ष को लेकर बनी अनिश्चितता से सोना एक बार फिर से सुरक्षित निवेश के रूप में अहमियत पाने लगा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में मार्च अनुबंध के लिए चांदी वायदा 8.7% बढ़कर 2,74,998 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अप्रैल अनुबंध के लिए सोना वायदा में सप्ताह के दौरान 3.3% की तेजी आई और ये 1,62,104 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। आने वाले दिनों में सराफा बाजार पर दुनिया भर की राजनीतिक उथल पुथल का असर बना रहेगा। और अगले कॉलर हैं दिल्ली से यशपाल, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
हाँ, गुड इवनिंग टीम मार्केट मंत्र एंड गुड इवनिंग स्नेहा मैडम।
गुड इवनिंग।
मेरा क्वेश्चन मैडम ये है कि ये म्यूचुअल फंड में जो टी रेशो, टोटल टीपी और सॉल्ट इन रेशो, इसमें क्या डिफरेंस रहता है और ये जो फंड मैनेजर रहते हैं वो कब चार्ज होता है, किस एट व्हाट स्टेज दे आर चार्जिंग इट, और क्या ये टी रेशो ज्यादा होने से कुछ मतलब लॉस वाली बात हो सकती है कि ये अवॉइड करना चाहिए, या पी रेशो ज्यादा होने वाले भी फंड अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? थैंक यू
जी। यशपाल जी, आपने कुछ अलग अलग रेशियोज का नाम लिया था जिसमें मुझे मतलब क्लैरिटी नहीं आई, जो नाम आपने लिए, बट इफ आई गॉट यू करेक्टली तो आपने मेंशन करा टी रेशियो। अब आपका मतलब टोटल एक्सपेंस रेशियो था, तो वो मैं आपको बता सकती हूँ कि जनरली जब हम इन्वेस्ट करते हैं इन एनी फंड तो एक मैनेजमेंट फी होती है, एक ऑपरेशन फी होती है, उसको कलेक्टिवली हम फंड मैनेजर को देते हैं, जिस फी को हम टोटल एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये हमारे NAV से कटती है, तो मतलब एक तरीके से हमारे रिटर्न्स में से जा रही होती है। बाकी दो तीन चीजें जो मैं समझ पाई हूँ, आप कह रहे हैं कि एक पीई रेशियो होता है, एक सॉर्टिनो रेशियो होता है, और मतलब ये क्या होते हैं अगर आप ये जानना चाह रहे हैं, तो ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल वेरिएबल्स हो जाते हैं जिससे आप ये जज कर सकते हैं कि एक फंड एक समय में, जो भी लेट्स से 3 इयर्स के पीरियड में, जैसे सॉर्टिनो रेशियो की मैं बात करूं तो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ समझने के लिए कि कितना फंड मैनेजर ने आपके आपके पोर्टफोलियो में जो रिस्क लिया उसके लिए कितना अच्छा रिटर्न दिया, वर्सेस ये कभी कभी वर्सेस स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जिसे हम वॉलेटिलिटी कहते हैं, जो शार्प रेशियो बताता है, कभी कभी वर्सेस एक ड्रॉडाउन होता है कि कितना फंड बेंचमार्क गिरा और फंड कितना गिरा उसके कंपैरिजन में होते हैं। ये बेसिकली तरीके होते हैं जानने के लिए कि फंड मैनेजर जिस टाइप का रिस्क ले रहा है उसके लिए वो कितना आपको रिटर्न में दे रहा है। अब एक आम निवेशक के लिए, जैसे आप सुनने में ही आपको लग रहा होगा कि ये देखना होता है, ये नहीं देखना होता, क्या ये ना देखने से हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं, और एक्चुअली हम जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम फंड मैनेजर पे एक तरीके से अपना भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना हार्ड अर्न मनी उन्हें दे रहे हैं। तो ये समझना और जानना अच्छी बात है, बट इसके वजह से अपना फंड चेंज करना या फिर अपनी एलोकेशन शिफ्ट करना वो एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में जरूरी नहीं रहता है, क्योंकि फंड मैनेजर का जॉब ही वही है, वो इन चीजों का ध्यान रखते हुए कर रहे हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आप उसी फंड में इन्वेस्ट करें जो आपके टाइम होराइजन के साथ मैच होता है। आप इक्विटी में तभी जाएं जब आप 5 साल तक के लिए जो उतार चढ़ाव है उनको नेविगेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो हमें एक स्टेबल डेट फंड में रहना चाहिए। और थोड़ा बहुत इक्विटी लेना चाहते हैं तो हमारे पास अलग अलग परसेंटेज के लिए अलग अलग टाइप के हाइब्रिड फंड्स हैं, तो इस तरीके से आप अपनी सोच बना सकते हैं।
नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली, शोभित जी अपना सवाल पूछें।
गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा।
Good evening.
My question to the expert is, I'll be retiring in a couple of months and I'll be getting my gratuity and other funds. So how do I go about dividing my money either into the ETFs, bonds or mutual funds? Which will be the best route so that I can get a return of around 12-16% in the long run, maybe in a span of 5-7 years. Thank you.
Right. So, Shobhit, sir, if I understand this correctly, you are not wanting to derive income out of this.
5-7 years baad inhe chahiye.
Right. So, to create any kind of retirement income plan, sort of... let's say to put your corpus into use for a later date, what holds utmost importance is how you maintain your equity debt asset allocation. At this very stage, giving up on equity is not something that we should refrain from doing. Generally, you know, historical numbers have proven that keeping at least 35-40% equity in your portfolio is something that has helped a lot in maintaining a certain kind of, you know, income, or if I can say inflation beating income. So first up, you really have to think, with all the corpus that you currently have, how much equity are you comfortable with at this stage? How I think about it, maybe a 50-50 kind of an equity debt asset allocation can work for you. For equity funds, it can simply be, let's say, two diversified, like multi-cap funds. And for debt allocation, you can look at short duration funds. And when you'll be nearer to your, when you're nearer to your goal, at that time, you can simply move 1 year of required expenses into, let's say, a liquid fund. The rest can remain in debt while you continue maintaining at least 35-40% in equity, and continue periodically rebalancing, let's say, over an year or over every year or so. And what is most important is not to be sort of hooked on this 12-16% kind of return generation ability from your portfolio. Rather, keeping this equity debt asset allocation continuous and keeping your withdrawal rate post 5 years not more than 6%. And this should be a beneficial plan.
All right, after that piece of advice, let's take a look at the other big story of the day. Prime Minister Narendra Modi inaugurated and laid the foundation stone of infrastructure projects worth over 4,400 crore rupees in Madurai, Tamil Nadu this afternoon. Addressing a rally of the NDA, the Prime Minister said, "Today's event marks a proud chapter in Tamil Nadu's development journey." He said these projects will transform connectivity, boost economy, create jobs and transform lives of lakhs of people. Earlier, Prime Minister Modi dedicated to the nation and laid the foundation stone for development projects worth over 2,700 crore rupees in Puducherry today. Addressing the gathering, the Prime Minister said that with investments in spiritual tourism, ecotourism and health tourism, the government is taking Puducherry to greater heights. Highlighting Puducherry's rise in per capita income and its achievement of the highest social index score in the country, he said the double engine government will add further momentum to the union territory's growth.
खबरें तो अभी बहुत सारी हैं सरबजीत, लेकिन स्नेहा से कुछ और जानकारियां भी लेनी है क्योंकि म्यूचुअल फंड की दुनिया में भी कुछ नया हो रहा है, कुछ नई खबरें आ रही हैं। कुछ आप पूछना चाहती हैं?
यस एब्सोल्युटली, आई एम श्योर यू आर हिंटिंग एट यू नो द सेबीज लॉन्च ऑफ द म्यूचुअल फंड लाइफ साइकिल फंड्स। वी लाइक टू हियर अबाउट दैट फ्रॉम यू स्नेहा, एंड वी लाइक टू स्पेशली नो दैट इज देयर एन एलिमेंट ऑफ गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग हियर?
Goal based,
yes.
Right. Yeah. So, life cycle funds in, let's say, a widely known concept is of a target date fund. And what it usually does is it automatically adjusts your asset allocation when you are nearing to that target. That's the name target date funds. Now, the SEBI's framework that has come for these life cycle funds, the main point to note here is that these will be goal based target date style funds, which will have a sort of a glide path. So as and when you are nearing to your goal, the equity and debt allocation, the SEBI has defined a particular framework that how much equity exposure and how much of debt exposure will this kind of fund will have. And yeah, widely globally, this has been a very, let's say, known and accepted concept, and people have benefited out of it, because sometimes when you are, you know, just going through life, what you do not suddenly realize is that you've hit your retirement. You know, you're
correct.
You've hit your life cycle goal, one most important one. So yeah, for those kind of goals, having an automatic adjustment within the particular fund with specific timelines built in is something that as a concept is very fundamentally, let's say, accepted and very, very thought through. But of course, there's some time. Let's see how these AMCs respond to it, how the kind of funds that come up with, because there are certain nuances attached. The fine print will only be, let's say, to be understood yet once we get a hold of
Jab
these products. Right,
funds
right.
Launch to ho jaye.
So Sneha, taking cue from what just you said, you know, what factors should investors consider before investing? Is it the window period, the goals, appetite for risk? What's your advice on this?
Right. So, absolutely, the appetite for risk is one, but that will be accounted for as and when you'll be nearing to your goal, because the equity debt exposure will be automatically adjusted. Having said that, my opinion is that an average Indian investor, you know, needs about four types of fund. Flexi cap for core equity, let's say a multi-cap also for core equity, a short duration fund for stability in a portfolio, and maybe if you want to save taxes, then an ELSS, and of course a hybrid fund also if need be, and everything else like sectoral, thematic, life cycle, fund of funds, it is optional at best. And maybe so I feel if you have your core set with multi-cap, flexi-cap, short duration, and a few hybrids if you need, all of these should be first understood versus your, you know, current portfolio versus your risk appetite, and only then one should invest in.
और आपने tax के लिए ELSS का नाम लिया, वो भी new regime में शायद उसकी जरूरत नहीं है।
अगर मतलब आप old regime में रहते हैं, या फिर ELSS उन लोगों के लिए भी currently beneficial हो जाता है जिनको invest करना एक टास्क लगता है और निकालना बहुत इजी लगता है
तो उनके तो वो बंधे रहते हैं कम से कम।
वो जो लॉक इन होता है वो एक तरीके का डिसिप्लिन आपके लिए बना देता है।
जी, और एक श्रोता ने बात की थी अभी NFO को लेकर, वो कई बार हम देखते हैं और कई बार हमने एक्सपर्ट्स को सुना है कि वो NFO की हवा निकालते रहते हैं। तो असल में मुझे लगता है कि शायद हमारे कुछ श्रोता, कुछ इन्वेस्टर्स जो है वो NFO को IPO जैसा कुछ समझ लेते हैं कि नया आ रहा है तो शायद सस्ते में मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर फंड नया भी है तो वो पहले से एग्जिस्ट कर रहे शेयर्स में ही कहीं इन्वेस्ट कर रहा होगा या दूसरी चीजों में।
बिल्कुल, क्योंकि मार्केट का जो यूनिवर्स है वो एक ही है, और फंड्स और स्टॉक्स में या मतलब यही फर्क हो जाता है कि आप जब एक IPO में जाते हैं, आपके पास उस कंपनी का एक लिखा जोखा होता है, वो अपने कुछ रिपोर्ट्स, कुछ नंबर्स रिलीज करते हैं जो आप पढ़ के समझते हैं और IPOs में इन्वेस्ट करते हैं। फंड्स में जब आप कर रहे होते हैं, आप कभी भी एक स्टॉक में तो कर नहीं रहे हैं, एक बंडल ही बन रहा है, और तो ज्यादा सही यही रहता है कि अगर कुछ फंड्स
ट्रैक रिकॉर्ड वाले के पास
वाले हैं तो आप उनमें करिए, वो बेनिफिशियल एटलीस्ट टू योर माइंड वो बेनिफिशियल रहता है कि हाँ इस फंड ने पहले भी ऐसी अप डाउन मार्केट्स में ऐसा प्रदर्शन करे, सो एटलीस्ट कुछ काइंड ऑफ एक एक्सपेक्टेशन आपकी रहती है. नहीं तो एनएफओ में वो एक तरीके का आप अंधेरे में तीर लगाने वाली बात हो जाती है.
स्नेहा, वेरी रिसेंटली सेबी हैज मैंडेटेड दैट ईटीएफ्स मस्ट यूज डेली डोमेस्टिक स्पॉट प्राइसेस फॉर कैलकुलेटिंग एनएवी रादर देन रिलाइंग ऑन इंटरनेशनल बेंचमार्क्स. इफ यू कुड एक्सप्लेन दिस इन सिंपलर टर्म्स फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर लिसनर्स.
राइट राइट. सो अंटिल नाउ व्हाट हैज बीन हैपनिंग वाज दैट ईच गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड्स कुड यूज इट्स own sort of method to calculate the price of the metal in its portfolio. And this actually meant that any two gold ETF could show slightly different NAVs, even though they held the same metal. So from now on, with this new regulation, all funds, like you mentioned, must use one common official price, which will be the live traded price from stock exchanges like MCX, where physical gold and silver is actually, you know, it actually changes hands. So what for a retail investor this means is that the NAV that you see now is very real, is going to be real, standardized and rather comparable. So you would definitely know when you are going out to, let's say, compare two gold ETFs. It just got simpler and more, let's say, honest.
जी. और खबर है जीएसटी कलेक्शन पर. इस वर्ष फरवरी में कुल वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 8.1% की वृद्धि हुई है और ये 1,83,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा. फरवरी 2025 में कुल जीएसटी संग्रह 1,69,000 करोड़ रुपए से अधिक था और इस वर्ष केंद्रीय जीएसटी संग्रह 37,473 करोड़ रुपए रहा, राज्य जीएसटी संग्रह 45,900 करोड़ रुपए रहा और एकीकृत आईजीएसटी संग्रह 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा.
Union Electronics and IT Minister Ashwani Vaishnaw said the trio of artificial intelligence, semiconductors and electronic manufacturing is set to drive India's next phase of exponential growth. Speaking at the inauguration of the Gujarat SemiConnect Conference 2026 in Gandhinagar today, Ashwani Vaishnaw highlighted the success of Semicon 1.0, saying that India has already secured 10 manufacturing plants. The minister stressed that the new priority under Semicon 2.0 is on building a robust deep tech startup environment and localizing the entire manufacturing chain similar to the foundations seen in nations like Japan. Speaking to media on the sidelines of the event, Ashwani Vaishnaw said that out of the 10 semiconductor plants, the production of the first plant started yesterday and by the end of 2026, 3 more plants will be operational. As trading for March will begin tomorrow, global markets are closely monitoring the geopolitical developments in West Asia following the US-Israel military strikes on Iran. Investors worldwide will monitor the economic implications of this conflict, especially its effects on key global commodities and regional investor sentiment. In domestic markets, outlook has already remained fragile amid rising geopolitical tensions, prompting cautious positioning as seen in Friday's session. Last week, benchmark domestic indices ended with losses. The Sensex plunged over 1.8%, while Nifty slipped more than 1.5%. Markets will remain closed on Tuesday on account of Holi. As a result, the weekly Nifty expiry shifts to Monday, compressing the trading window. Globally, crude oil prices are also set to see significant swings this week amid potential disruptions in the Strait of Hormuz, through which 20% of the global oil supply passes.
स्नेहा, मार्केट मंत्र में आने और बहुत सार्थक चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
जी, धन्यवाद.
Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Foreign portfolio investors infused 22,615 crore rupees into Indian equities in February, reaching 17-month high. Prime Minister Narendra Modi inaugurates infrastructure projects worth over 4,400 crore rupees in Madurai. And domestic investors to focus on geopolitical tensions and tariff-related developments for queues in holiday truncated next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
मार्केट बंद कर।